ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 31 मई 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून: कदीम और जदीद जादूगरी, उर्फियत, तनवीम और इल्म नौमियत से इनकार। सुनहरी मतन: याकूब, खुदा के नज़दीक जाओ, वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। जवाबी मतालिया: पतरस, बस हर तरह की बदखाही और सारे फ्रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नवजात बच्चों की मानद खालस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। लेकिन तुम हर एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ बयान करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत न थे, मगर अब तुम खुदा की उम्मत हो। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर इन्हीं के सबब से मुलाहिजा के दिन खुदा की तमजीद करें। क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। दरसीबाज बाइबल में से खरूज: और खुदा ने ये सब बातें उनको बताईं। खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। सैमुएल: और सैमुएल मर चुका था और सब इसराइलियों ने उस पर नोहा करके उसे उस शहर रामा में दफन किया था, और साउल ने जन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से खारिज कर दिया था, और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शनीम में डेरे डाले, और साउल ने भी सब इसराइलियों को जमा किया और वो जलबोआ में खैमाजन हुए, और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा, और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने ना तो उसे ख्वाबों और ना ओरियम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके गुलामों ने उससे कहा, देख, ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो साउल ने अपना भेस बदल कर दूसरी पोशाक पहनी और दो आदमियों को साथ लेकर चला, और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा, ज़रा मेरी खातर जिन के ज़रिया से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुएल को देखा तो बुलंद आवाज़ से चिल्लाई। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बूढ़ा ऊपर को आ रहा है और वो जुब्बा पहने हुए है। तब साउल जान गया कि वो सैमुएल है, और उसने मुंह के बल गिरकर सजदा किया। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने मुझे क्यों बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूँ क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदावंद मुझसे अलग हो गया है, और ना तो वो नबियों और ना ख्वाबों के वसीला से मुझे जवाब देता है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूँ। सैमुएल ने कहा, बस तू मुझसे किस लिए पूछता है, जिस हाल के खुदावन तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना, और खुदावन ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावन ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली है, और तेरे पड़ोसी दाऊद को अनायत की है, इसलिए कि तूने खुदावंद की बात नहीं मानी और अमालिकियों से इस कदर कहरे शदीद से पेश नहीं आया, इसी सबब से खुदावंद ने आज के दिन तुझसे ऐसा बर्ताव किया। मां सवाए इसके खुदावंद तेरे साथ इसराइलियों को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे और खुदावंद इसराइली लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल फौरन जमीन पर लंबा होकर गिरा और सैमुएल की बातों से नहायत डर गया। यसाया। और जब वो तुमसे कहें कि तुम जन्नात के यारों और अफसूनगरों को जो फुसफुसाते और गिड़गिड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो, क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदावंद के तालब हों। खरूज। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गय्यूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। मत्ती। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौंचाल आएंगे, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। तसलींकियों। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफतन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगिश्तगी ना हो। तिमोथियुस। लेकिन ये जान रख कि अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, सरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुंद मिजाज, निकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। यहाँ रूह की एक हकीकी दिलकशी के सिवा कुछ नहीं है। सुई की नोक से कतर तक खुदा यानी इलाही अकल की सबको समेटने वाली ताकत या दिलकशी की निशानदेही करती है। अच्छाई की जानब हर बढ़ता कदम मादियत परस्ती से अलहदगी है, और ये खुदा रूह की जानब एक रुझान है। मादी नजरियात जुजवी तौर पर मुतनाही, आर्जी और मुखालफ की एक बरक्स दिलकशी की बदौलत लामुतनाही और अबदी की जानब इस दिलकशी को मफलूज कर देती है। अगर इंसान को वाहिद बाप जिसमें हम जीते और चलते फिरते और मौजूद होते हैं की जानब अपनी कशिश और दिलकशी खो देनी चाहिए, और अगर इंसान पर इलाही असूल की बजाय جسمانیت کی حکمرانی روح کی بجائے بدن کی حکمرانی ہونی چاہیے تو انسان فنا ہو جائے گا، روح کی بجائے جسم کے وسیلہ خلق ہوتے ہوئے، خدا کی بجائے مادے سے شروع ہوتے ہوئے فانی انسان پر خود کی حکمرانی ہوگی۔ اندھے کو اندھا راہ دکھائے تو دونوں گریں گے۔ جذبات اور بھوک درد پر اختتام پذیر ہونے چاہیے، وہ تھوڑے دنوں کے ہیں اور دکھ سے بھرے ہیں، ان کی فرضی خوشیاں دھوکا ہیں، ان کی تنگ نظری ان کی خوشیوں کی بے حرمتی کرتی ہے اور ان کی کامیابیوں میں کانٹوں کی رکاوٹ ڈالتی ہے۔ فانی عقل زندگی اور خوشی کے غلط اور مادی نظریے کو قبول کرتی ہے، مگر حقیقی خیال لافانی سمت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سخت محنت، کوشش اور دکھ کے وسیلہ بشر کیا حاصل کرتے ہیں؟ وہ اپنے عقیدے کو قابل تسخیر زندگی اور خوشی کی نظر کر دیتے ہیں، فانی اور مادی راکھ میں لوٹ جاتے ہیں اور لافانی ہی رسائی پاتا ہے۔ فرضی قوانین جن کا نتیجہ مایوسی اور بیماری نکلتی ہیں اس کے قوانین نہیں ہیں، کیونکہ سچائی کا واحد جائز اور ممکن عمل ہم آہنگی کی ہی پیداوار ہے۔ فطرت کے قوانین روح کے قوانین ہیں۔ الہی عقل بجا طور پر انسان کی مکمل فرما برداری، پیار اور طاقت کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس سے کم وفاداری کے لیے کوئی تحفظات نہیں رکھے جاتے۔ سچائی کی تابعداری انسان کو قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے، غلطی کی سپردگی طاقت کی کمی کو بڑھا دیتی ہے۔ بدی کی پہچان الوہیت یا انسانیت کا جوہر کبھی نہیں تھی۔ انسانیت کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بدی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی نام نہاد جبری حکومت عدم کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے کہ کرسچن سائنس میں نام دیا گیا ہے، حیوانی مقناطیسیت یا علم نومیات غلطی یا فانی عقل کے لیے خاص اصطلاح ہے۔ یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے کہ عقل مادے میں ہے اور کہ یہ اچھائی اور برائی دونوں ہیں، کہ بدی اچھائی جتنی حقیقی اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس عقیدے میں سچائی کی ایک بھی خصوصیت نہیں ہے، یہ یا تو بے خبر ہے یا حاسد ہے۔ نومیت کی حاسد شکل اخلاقی گراوٹ میں بنیاد رکھتی ہے۔ حقیقت میں کوئی فانی عقل نہیں ہے اور نتیجتاً فانی خیال اور قوت ارادی کی منتقلی نہیں ہے۔ زندگی اور ہستی خدا ہیں۔ کرسچن سائنس میں انسان کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ سائنسی خیالات حقیقی خیالات ہیں جو خدا سے انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ کرسچن سائنس ذہنی عمل کے پیندے تک جاتی ہے اور اثبات عدل الہی کو ظاہر کرتی ہے، جو پورے الہی عمل کی درستگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیسے کہ الہی عقل کا اجرا اور نتیجہ مخالف نام نہاد عمل کی غلطی ہوتا ہے۔ بدی، سحر پرستی، جادوگری، تنویم، حیوانی مقناطیسیت، علم نومیات۔ جیسے روشنی تاریکی کو نیست کر دیتی ہے اور تاریکی کی جگہ ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح مطلق سائنس میں روح یا خدا انسان کو سچائی دینے والا ہے۔ خدائی ہستی اچھائی ہمیشہ سے موجود ہے، یہ الہی منطق میں مانتی ہے کہ بدی اچھائی کی فرضی مخالف کبھی موجود نہیں ہے۔ سائنس میں خدا لامتناہی حاکم کل سے اخذ شدہ انفرادی اچھائی انسان کی طرف سے بہہ سکتی ہے، مگر بدی ترسیل پذیر ہے نہ سائنسی۔ ایک گناہگار زمینی بشر زندگی کی حقیقت نہیں اور نہ ہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سچائی زمین پر پہنچتی ہے۔ جب بدی اور دکھ ترسیل پذیر ہوتے ہیں تو مباشرت کی تسکین گناہ کا مذاق بن جاتی ہے۔ الہی قانون نہیں بلکہ ذاتی عمل اشتراک انسانیت اور زمین کے لیے سچائی، صحت اور ہم آہنگی کا رابطہ کار ہے۔ یہ عقیدہ کہ ایک شخص بطور روح دوسرے شخص کو بطور مادہ قابو میں کر سکتا ہے، انسان کی سائنس اور انفرادیت دونوں کو پریشان کر سکتا ہے، کیونکہ انسان شبیہ ہے، خدا انسان پر اختیار رکھتا ہے اور خدا واحد روح ہے۔ نام نہاد روح کا کوئی اور اختیار یا کشش ایک فانی عقیدہ ہے جسے اس کے پھل کے وسیلہ بدی کے تکرار سے پہچاننا چاہیے۔ क्रिश्चियन साइंस में पीछे हटने वाला कोई कदम नहीं है, आगे निकलने वाली हालत से कोई वापसी नहीं है। नामनेहाद मुर्दा या जिंदा एक दूसरे के साथ शराकत नहीं रख सकते, क्योंकि वो वजूदियत या शऊर की अलग अलग हालत में होते हैं। ताकत की अजीम तर तरक्की की जानब तेजी से बढ़ते हुए गुनाह और अयाशी की दुनिया में इस बात पर तवज्जो से गौर करना अक्लमंदी है कि आया मुतासर करने वाली अक्ल इंसानी है या इलाही। जो काम यहोवा के अंबिया ने किया वो बाल के परस्तार करने में नाकाम रहे, ताहम चालाकी और फ्रेब नजरी ने ये दावा किया कि वो हिकमत के कामों के मुसाविक कर सकते थे। साइंस महज नाकाबिल यकीन अच्छाई और बदी के अनासर को वाजह कर सकती है जो सामने आ रहे हैं। इन बाद के अयाम से बचने के लिए इंसानों को सच्चाई में पनाह लेनी चाहिए। अब यह मादी दुनिया में मुतसादम कुवतों का अखाड़ा बन रही है। एक तरफ तो यहां मुखालफत और मायूसी होगी, जबकि दूसरी तरफ यहां साइंस और अमन होगा। बशरी गलती एक इखलाकी कीमियाई अमल में गायब हो जाएगी। ये जहनी उबाल शुरू हो चुका है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ईमान की तमाम तर गलतियां फहम को तस्लीम ना कर लें। हकीकत में जितनी ज्यादा कुर्बत के साथ गलती सच्चाई की नकल करती है और नामनेहाद मादा इसके जौहर फानी अकल से मुशाबत रखता है, उतनी ही कमजोर गलती एक अकीदे के तौर पर सामने आती है। इंसानी अकीदे के मुताबिक रोशनी शदीद और बरकी करंट की तेजी है, ताहम क्रिश्चियन साइंस में एक की उड़ान और दूसरे की नमोद बेजरर बनेंगी। जितना ज्यादा मादा तबाहकुन बनता है उतना ही इसका अदम जाहिर होगा। जब तक कि मादा फ्रेब नजरी में इसके फानी ज़वाल तक नहीं पहुंचता और हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाता, उस हदूद के बगैर जहां इलाही मोहब्बत के वसीला तबाह होते हुए एक झूठा अकीदा एक फ्रेब नजरी होना तर्क करते हुए जितना सच्चाई के करीब तर होता जाता है उतना ही ये तबाही के लिए पकता जाता है। जितना ज़्यादा अकीदा मादी होगा उतना ही वाजह इसकी गलती होगी। जब तक कि इलाही रूह अपनी सल्तनत में आला तरीन सारे मादे पर गालब नहीं आती और इंसान रूह की छवि अपनी असल हस्ती में नहीं पाया जाता। वसीतर हकायक खुद के खिलाफ बड़ी गलतियां तरतीब देते हैं क्योंकि वो खुफिया तौर पर गलती को लाते हैं। सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है क्योंकि सच्चाई जितनी ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद करती है गलती की चीख उतनी ही ऊँची होगी। जब तक कि फरामोशी में इसकी गैर वाज़ह आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश न कर दिया जाए। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ़राइज पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुना मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे खैरात पसंदी और माफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से गलत किस्म की पेशनगोइयों मुनसफियों मजम्मतों इसलाहों गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना जहनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।